लेकिन घर से दूर बैठे मोहन कुमार को जब इसकी खबर मिली तो वह परेशान हो गया। उसे एकाएक विश्वास नहीं आया था कि देव की शादी इतनी जल्दी एकाएक कैसे तय हो गई। वह मान कैसे गया, और मान भी गया तो लड़की कैसे पसंद की? कहीं उसकी स्थिति को छिपाया तो नहीं गया? लेकिन मोहन को रमेश पर भरोसा था। तभी आर्मी एक्सचेंज से उसने रमेश से फोन पर बात करने के लिए कॉल बुक करवा दी। सिकंदराबाद से दिल्ली कॉल मिलने में 4 घंटे लग गए, और इस बीच कर्नल मोहन कुमार लगातार शराब पी रहा था। मानसिक तनाव को दूर करने का यही साधन उसे अच्छा लगता था। उसकी पत्नी निम्मी इन उलझनों को दूर नहीं कर पाती थी, उल्टे कई बार बनती हुई बात को और बिगाड़कर उसे अधिक खुशी मिलती थी। ऐसी कई औरतें भी होती हैं जो हर अच्छी बुरी बात को सिर्फ बिगाड़ने की दृष्टि से ही देखती हैं। कोई उनके माध्यम से हंसे ताकि उनकी तारीफ हो, यह उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन कोई अपनी खुशी में खुश होकर हंसे और उन्हें बताए कि उसे फलां खुशी मिली है, ऐसा उन्हें अच्छा नहीं लगता। ऊपर से हंसती हैं लेकिन मन ही मन उन्हें अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही हुआ था उसे देव की शादी की खबर सुनकर। उसे मालूम भी ना था और बात पक्की हो गई। तभी तो तार पड़ते ही मोहन कुमार को बोली, लो जी शादी पक्की हो गई और हमें पता भी नहीं चला। सब काम पूरा करके हमें बता रहे हैं। अच्छा होता शादी के बाद ही खबर कर देते। और तार उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, कल कुछ हो गया तब परेशानी हमें सहनी पड़ेगी। उसने बुरा सा मुंह बनाया साथ ही। मोहन कुमार तब कुछ बोला नहीं। तार देखने लगा लेकिन उसमें कुछ अधिक नहीं लिखा था, केवल चंद शब्द थे। देव की शादी 9 फरवरी की तय हुई है। दिल्ली पहुंचे रमेश। मोहन कुमार ने पढ़ा और तार रख दी। कुछ पल वह सोचता रहा, फिर उठकर उसने सामने के रैक से शराब की बोतल निकाल ली और निम्मी से गिलास लाने को कहा। तब किचन की तरफ जाते हुए निम्मी ने कहा, बस आपको तो यही तरीका आता है सोचने का। परेशानी हो तब भी, खुशी हो तब भी। फिर कुछ रुक कर बोली, कुछ कहोगे नहीं? कहने को क्या है मेरे पास? मोहन खोया हुआ कुछ सोचते हुए बोला। उसका मन दिल्ली में पहुंच चुका था। देव के मन को टटोल रहा था, क्यों नहीं है कुछ? सबसे पहले तुम्हें चाहिए सीधे सीधे रमेश से पूछो कि उसने लड़की वालों को क्या कुछ बताया है। फिर स्वयं लड़की वालों से बात करो। कल कहीं कुछ हो गया तो नाक अपनी ही कटेगी, निम्मी ने स्पष्ट रूप से कहा। यही करूंगा, पहले रमेश से बात हो जाए। मोहन को भी निम्मी की बात उचित लगी थी। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। मोहन ने वहीं बैठे फोन उठा लिया। हेलो सर, दिल्ली नंबर होल्डिंग सर, ऑपरेटर की आवाज थी। ओके। हेलो, ऑपरेटर ने लाइन क्लियर कर दी। दूसरी तरफ रमेश ही था। हेलो भाई साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रमेश, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूं, आप सुनाइए। फिर कुछ रुक कर आवाज आई, मेरी तार मिल गई थी? हां मिल गई थी। देव खुश है क्या? बहुत खुश है। सुनो रमेश, तुमने देव के विषय में पूरी जानकारी दी है ना लड़की वालों को? रमेश ने पल भर का मौन रखा। मोहन ने दोबारा कहा, हेलो मेरी बात सुन रहे हो ना? हां भाई साहब, सब कुछ बताया है, और मैंने डॉक्टर गुप्ता से भी बात की थी। उसने भी देव का चेकअप करके यही कहा है, अब कोई परेशानी नहीं है। शादी के बारे में उसी से पूछकर देव ने हां की है। फिर ठीक है, मुझे इसी बात की चिंता थी। लड़की कैसी है? मोहन ने राहत की सांस ली। अच्छी है, एमए बीएड है, सेंट्रल स्कूल में टीचर है। और फैमिली? पढ़े लिखे लोग हैं, देहरादून में अपना घर है, पिता रिटायर्ड हैं, लड़की घर में दूसरे नंबर पर है। चलो अच्छी बात है, देव को मेरी ओर से बधाई देना। मोहन सब विस्तार से सुनकर खुश हो गया। आप आ कब रहे हैं? उधर से रमेश ने पूछा। कोशिश करूंगा छुट्टी जल्दी मिले, नहीं तो शादी से एक दो दिन पहले जरूर पहुंच जाऊंगा। चलिए अच्छी बात है, भाभी कैसी है? रमेश को निम्मी का ध्यान हो आया, कहीं भूल जाता तो उसकी शामत आ जाती। अच्छी है, लो बात कर लो। फिर मोहन ने निम्मी को फोन पकड़ा दिया। निम्मी रमेश से बात करने लगी, बातें होती रही। कभी मालती ने बात की, कभी अमित ने, और मां ने भी निम्मी से बात की। देव घर पर नहीं था। 15 मिनट से ऊपर सिलसिला चलता रहा। सरकारी फोन का सही इस्तेमाल हो रहा था, और यह तो अब सबको अपने अधिकार क्षेत्र की बात लगती है। सभी कहते हैं, सभी करते हैं, फिर काहे की चिंता। फोन पर बात करके मोहन कुमार को तसल्ली हो गई थी। अब वह खुशी से पी रहा था। रात काफी हो रही थी। निम्मी खाना लगाने को उतावली हो रही थी। उसने मोहन से 2-3 बार आग्रह किया उठने को, और मोहन ने उठते उठते एक बैग और बनाया और बढ़कर निम्मी के होठों पर लगा दिया और बोला उससे, चीयर्स फॉर द हेल्थ ऑफ देव। और निम्मी ने भी मोहन की खुशी में एक छोटा सा घूंट भरकर उसका साथ दिया। देव की बारात में नाचने वाले 3 लोग थे, प्रमोद, अमित व रमेश कुमार। मोहन व बाबूजी बैंड के साथ साथ चल रहे थे। देव की बहन नीता, भाभी मालती व निम्मी, मां और कोमल सभी देव के साथ कार में बैठे थे। यही थे बाराती और कोई भी नहीं। हां, देखने वाले भी यही सोच रहे थे कि बारात में बैंड वालों की संख्या अधिक है, लेकिन इन तीनों ने रौनक लगा रखी थी। होटल से घर तक का रास्ता लगभग 0.5 किलोमीटर का था, और ये सभी सारे रास्ते नाचते चल रहे थे। मोहल्ले के बच्चे बूढ़े सभी खुशी खुशी इस बारात को देख रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे देखने वाले सभी बाराती हों, इसीलिए सड़क भी भरी भरी दिखाई पड़ रही थी। स्वागत द्वार के पास पहुंचकर प्रमोद व अमित काफी देर तक नाचते रहे। वधू पक्ष वाले सभी उन्हें देख रहे थे। सभी के चेहरों से प्रसन्नता झलक रही थी। अमित नाचते हुए भी अपनी आंखों को इधर उधर दौड़ाकर कुछ देखने की चेष्टा कर रहा था। सभी के चेहरों में वह कोई एक चेहरा खोजना चाह रहा था, शायद प्रिया का। लेकिन प्रिया वीणा के पास थी, घर में। उसे क्या मालूम था कि कोई उसका दीवाना बन गया है। वह तो अपनी दीदी की शादी में इतनी रमी हुई थी कि अमित या कोई और उसे पास से आकर भी घूरने लगता तो भी जान ना पाती, और अमित तो चोर निगाहों से अभी उसे ढूंढ ही रहा था। बैंड रुका तो पंडित जी ने मंत्रोच्चार से बारात का स्वागत किया। फिर पन्नालाल ने आगे बढ़कर देव के पिता के गले में माला डालकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात सभी का स्वागत किया गया। पंडाल घर के भीतर ही लगाया गया था। घर काफी खुला था और लगभग 100 व्यक्ति आसानी से एक साथ खड़े हो सकते थे। बारात तो थोड़ी थी ही, और पन्नालाल ने भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत कम व्यक्तियों को आमंत्रित किया था। साथ ही काफी लोग तो वापस जा चुके थे अपनी बधाई देकर। जयमाला के समय अमित देव के साथ ही खड़ा था और बजाय देव व वीणा की जयमाला देखने के उसने अपनी निगाहें प्रिया पर टिका रखी थी। प्रिया हंसती थी तो अमित का सारा शरीर पुलकित हो उठता था। इस समय उसके हृदय की धड़कन बढ़ी हुई थी। प्रमोद ने उसकी चोर निगाहों को पढ़ लिया था और तभी उसके कान में बोला था आहिस्ता से, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते बच्चू, मैंने सब देख लिया है। अमित सब पका गया लेकिन कुछ बोला नहीं, मुस्कुरा भर दिया। जब जयमाला के बाद देव को वीणा के साथ भीतर ले जाया गया तब प्रमोद अमित की बाजू पकड़े पंडाल के एक कोने में आकर बैठ गए। सामने संगीत पार्टी ने संगीत की धुन छेड़ रखी थी। अब बोलो तुम्हारी क्या सलाह है, प्रमोद ने धीरे से पूछा अमित से। मेरी? अमित ने चौंकने का अभिनय किया। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था, खुश था अपनी चोरी पकड़ी जाती देखकर। उसे लग रहा था कि प्रमोद उसका रास्ता आसान कर सकता है। और नहीं तो मेरी क्या, क्या कर रहा था तू, मैं सब देख रहा था, प्रमोद उसकी बाजू को प्रेम से मरोड़ते हुए बोला। मैंने तो कुछ नहीं किया, अमित ने अनजान बनने की असफल चेष्टा की। कुछ नहीं किया, किसे देख रहा था, मुझसे झूठ बोलेगा तो अभी फंसा दूंगा। देख वह सामने खड़ी है, मैं अभी उसे अपने पास बुलाता हूँ और बोल देता हूँ कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। अमित को लगा जैसे प्रमोद जो कह रहा है वह करके दिखा देगा। घबरा गया और हथियार डालते हुए बोला, अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं करना, मैं तो वैसे ही देख रहा था। तब प्रमोद ने कहा, मान गए ना मुझे उस्ताद? हाँ मान गया, अब हुक्म दीजिए। और तब अमित ने भी अपने मन की हर चाह को खोलकर रख दिया प्रमोद के सामने। हुक्म यही है कि अब इस रास्ते से पीछे नहीं हटना है तुम्हें। जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई अमित को प्रमोद के इन शब्दों से। ऐसा अब मुमकिन भी तो नहीं, इस रास्ते पर आगे ही बढ़ा जा सकता है, पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। अमित ने उसी लहजे में जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है, जितनी हो सकेगी मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रमोद ने उसे आश्वस्त किया, आओ अब भीतर चलते हैं सबके पास। चलिए गुरुजी। ये दोनों एक दूसरे की बांह में बांह डाले भीतर की ओर बढ़ गए। उस समय संगीत पार्टी का एक गायक संगीत की मधुर धुन पर एक गीत गा रहा था जिसके बोल थे, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अमित को ये बोल अपनी मनोदशा जैसे लगे, वह उन्हें ही गुनगुनाने लगा।